यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 1 अप्रैल 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। महामारियों की रोकथाम के लिए WHO ने सिफारिश की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की। UN प्रमुख ने कहा, सीरिया में युद्ध खत्म कराना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है सामूहिक जिम्मेदारी। म्यांमार में बहुत से लोग सुरक्षा के लिए भागे पड़ोसी देशों को, UN एजेंसियों ने लगाई उन्हें सुरक्षा दिए जाने की पुकार। UN प्रमुख ने कहा, लैंगिक समानता है इस सदी का अधूरा मानवाधिकार संघर्ष। और प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हो रहा है कमजोर वर्गों पर। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। दुनिया के अनेक देशों की प्रतिनिधि हस्तियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की खातिर भविष्य में COVID-19 जैसी महामारियों की रोकथाम व उनसे निपटने की तैयारियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि वजूद में आनी चाहिए। इस बीच मनुष्यों में COVID-19 वायरस का फैलाव कैसे शुरू हुआ, इसकी जांच करने के लिए WHO द्वारा चुने गए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित हुई। उधर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने यूरोपीय देशों में वैक्सीन के टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर गहरी चिंता जताई है। COVID-19 से जुड़ी खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने गुरुवार को जिनेवा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि G20, G7 और हर क्षेत्र के 25 से ज्यादा नेता महामारी पर संधि के विचार पर एकजुट हुए हैं। UN एजेंसी प्रमुख के मुताबिक इन नेताओं ने माना है कि दुनिया कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी और भविष्य में ऐसी महामारी के फैलाव से निपटने के लिए सामूहिक रूप से तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे वायरसों का अंदेशा हमेशा बना रहेगा जिनसे महामारी फैलने का खतरा होगा। ऐसे में महामारी से निपटने की तैयारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक पीढ़ीगत संकल्प होगा। उन्होंने कहा कि नई संधि में स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत बनाए जाने को सर्वोपरि प्राथमिकता देनी होगी, जो कि स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ता की बुनियाद है।
Health and care workers are at the forefront of the response to the COVID-19 pandemic and they play the critical role in protecting us all. Far too many health and care workers have died in the pandemic.
स्वास्थ्य और देखभाल कर्मी COVID-19 महामारी पर जवाबी कार्रवाई के अग्रिम मोर्चे पर हैं और हम सभी की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। वैश्विक महामारी के दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है, लाखों संक्रमण का शिकार हुए हैं और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है। बेचैनी, मानसिक अवसाद, अनिद्रा, तनाव सभी कुछ बढ़ गया है, थकान होना आम बात है और कलंकित व यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के भी मामले सामने आए हैं। महानिदेशक गेब्रियसिस ने ध्यान दिलाया है कि मौजूदा हालात में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के परिवारों व समुदायों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। COVID-19 से अब तक 12,85,00,000 संक्रमणों की पुष्टि हो चुकी है और 28,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 54 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकों को दिया जा चुका है। लेकिन UN स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा है कि यूरोप में COVID-19 टीकाकरण की रफ्तार अस्वीकार्य स्तर तक धीमी रही है। इन हालात में संक्रमण के नए मामले लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में फिर से उभरने लगे हैं। दुनिया भर में COVID-19 से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में यूरोप का दूसरा स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार वैक्सीन इस महामारी से बाहर निकलने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प मुहैया कराती है, फिर भी टीकाकरण प्रक्रिया बेहद धीमी रही है, जो कि अस्वीकार्य है। इस बीच मनुष्यों में COVID-19 वायरस के फैलाव के स्रोत की जांच करने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने इसे एक स्वागत योग्य कदम करार दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि ये अभी सही निष्कर्ष से बहुत दूर है। संगठन के महानिदेशक ने कहा कि अभी तक वायरस का स्रोत नहीं मिला है, विज्ञान के जरिए इसकी खोज जारी रखनी होगी और ऐसा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। 34 सदस्यों वाली टीम ने इस वर्ष जनवरी में चीन के वुहान शहर का दौरा किया था, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती मामले सामने आए थे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने संकटग्रस्त देश सीरिया में लोगों की मदद जारी रखने के लिए धन एकत्र करने के वास्ते हुए संकल्प सम्मेलन में कहा है कि देश में 10 वर्षों से जारी संघर्ष को समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस ब्रसेल्स सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से किया था। यूएन प्रमुख ने 5वें ब्रसेल्स सम्मेलन को अपने वीडियो संदेश में कहा कि एक दशक तक युद्ध देखने के बाद बहुत से सीरियाई जन का ये भरोसा ही खत्म होने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता तलाश करने में कोई मदद कर सकता है। इस वर्चुअल सम्मेलन में सीरिया में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए लगभग 4 अरब 20 करोड़ डॉलर और क्षेत्र के ही अन्य देशों में रहने वाले सीरियाई शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों की मदद करने के लिए 5 अरब 80 करोड़ डॉलर की रकम एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। यूएन प्रमुख ने देशों की सरकारों से जोर देकर कहा कि उन्हें सीरियाई लोगों की वित्तीय और मानवीय सहायता के लिए अपने संकल्प बढ़ाने होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरिया में चल रहा युद्ध केवल सीरिया की लड़ाई नहीं है, इस युद्ध को और इसके कारण होने वाली भीषण तबाही और तकलीफों को बंद करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR और यूएन शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने म्यांमार के पड़ोसी देशों से आग्रह किया है कि वो देश में हिंसा और दमन से बचकर सुरक्षा की खातिर भागने वाले लोगों को शरण और सुरक्षा मुहैया कराएं। म्यांमार में राजनीतिक संकट गुरुवार 1 अप्रैल को तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
देश भर में राजनीतिक अशांति फैलने के अतिरिक्त कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी सेना और नस्लीय सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई होने की खबरें हैं। इनमें काइन प्रांत में हवाई हमले किए जाना भी शामिल है, जिसके कारण वहां के लोगों को देश के ही भीतर अन्य स्थानों के लिए और सीमा पार भी भागना पड़ रहा है। यूएन शरणार्थी एजेंसी ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा है कि जो बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपना जीवन बचाने की खातिर भाग रहे हैं, उन्हें सुरक्षा और पनाह मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसे स्थानों को वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उनके जीवन या आज़ादी के लिए खतरा हो सकता है। एजेंसी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को खतरनाक स्थान पर वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करने का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये सभी देशों पर लागू होता है। इससे पहले बुधवार को म्यांमार के लिए यूएन की विशेष दूत क्रिस्टीना श्रेनर बर्गनर ने देश में हालात के मद्देनजर ठोस और एकजुट अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग दोहराई थी। उन्होंने कहा कि म्यांमार में सैन्य नेतृत्व ने मानवाधिकार हनन रोके जाने और लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ने की अपीलों को अनसुना कर दिया है। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, जिसके बाद देश भर में हालात तेजी से बिगड़े हैं। सुरक्षा बलों की दमनात्मक कार्रवाई में 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और 2500 से ज्यादा को बंदी बनाकर रखा गया है। इनमें से बहुत से बंधकों के ठिकानों की कोई जानकारी नहीं है और बहुत से लोगों को जबरन गायब किया गया है। यूएन मानवाधिकार एजेंसी ने क्षोभ जताया है कि देश भर में रात को छापे मारे जाना, बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाना और हत्याएं होना दैनिक घटनाक्रम बन गया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने इस सप्ताह के आरंभ में कहा था कि सेना की कार्रवाई में 35 बच्चों की भी मौत हुई है और अनेक अन्य गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं। यूएन बाल एजेंसी के अनुसार लाखों बच्चे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हिंसात्मक कार्रवाई के भयावह दृश्यों के गवाह बने हैं, जिससे उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सोमवार को पीढ़ी समानता फोरम यानी जनरेशन इक्वालिटी फोरम में कहा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार प्राप्ति का कार्य सदी का ऐसा मानवाधिकार संघर्ष है जो अभी अधूरा है। ये फोरम मैक्सिको सिटी में सोमवार को शुरू होकर 3 दिन चला। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन प्रमुख ने अलबत्ता हाल के दशकों में हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों का संज्ञान लिया, मगर जोर देकर कहा कि प्रगति कुछ धीमी रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रतिगामी कानून फिर से लौट आए हैं, महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाली हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और कोविड महामारी के भूकंप समान झटकों ने बहुत सी उपलब्धियों को बेकार कर दिया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने स्पेनिश भाषा में बोलते हुए कहा, अब समय है कि हम सभी फिर से एकजुट हों और अपनी ऊर्जा फिर से ताजा करें। ज्यादा समान, ज्यादा न्याय संगत और ज्यादा टिकाऊ विश्व बनाने के लिए जहां तमाम लोग किसी भेदभाव और डर के बिना अपने मानव अधिकारों का आनंद उठा सके। इस फोरम का आयोजन लैंगिक सशक्तिकरण पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन विमेन ने किया और इसके सह आयोजक मेक्सिको और फ्रांस हैं। और इस फोरम का समापन जून 2021 में पेरिस में होगा। यूएन महासचिव ने कहा, जून में पेरिस में पहुंचने से पहले हम साहसिक संकल्प और ज्यादा संसाधन निवेश मेज पर देखना चाहते हैं। हमारी आधी आबादी के समान अधिकारों को वास्तविक रूप देना एक ऐसा कार्य है जो इस सदी का अधूरा मानव अधिकार संघर्ष है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण से हो रहे पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे अधिक खमियाजा कमजोर समुदायों को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट में जोर देकर ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे के समाधान और मानवाधिकारों, स्वास्थ्य व कल्याण तक सभी की पहुंच फिर से आसान बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट का शीर्षक है निग्लेक्टेड एनवायरमेंटल जस्टिस इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले पर्यावरण समूह अजुल के साथ मिलकर तैयार की है। इसमें उल्लिखित निष्कर्षों का उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे से प्रभावित समुदायों को सशक्त बनाना और निर्णायक भूमिकाओं में उनके शामिल होने की वकालत करना। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लास्टिक उत्पादन से पर्यावरणीय अन्याय कैसे जुड़े हैं, जैसे कि सड़क निर्माण के लिए वनों की कटाई, तेल की खुदाई के लिए स्थानीय लोगों का विस्थापन, या अमेरिका और सूडान जैसे देशों में प्राकृतिक गैस निकालने के लिए फ्रैकिंग ऑपरेशन से पेयजल का दूषित होना। इसके अलावा रिपोर्ट में मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिफाइनरियों के पास रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों के बीच स्वास्थ्य समस्याओं और भारत में कचरा बीनने वाले लगभग 20 लाख लोगों के सामने आने वाले व्यावसायिक जोखिमों की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल और विनिर्माण को निकालने से लेकर उपभोग और निपटान तक उत्पादन चक्र के सभी चरणों में कमजोर समुदायों पर प्लास्टिक का प्रतिकूल व बहुत गंभीर असर हो रहा है। प्लास्टिक कचरा न केवल समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका को खतरे में डालता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है जो विषाक्त सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक से प्रभावित समुद्री भोजन का सेवन करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2030 में विश्व की स्थिति नामक सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को इस दशक के दौरान सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मई से सितंबर 2020 के दौरान ऑनलाइन साधनों के जरिए कराए गए इस सर्वे में दुनिया भर से 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 25 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले का कहना है कि लोगों की विशिष्ट चिंताओं को समझने के लिए और भी ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, और ऐसा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता बहुपक्षवाद का है। बहुपक्षवाद में भरोसा बहाल करने के लिए ठोस व प्रभावशील परियोजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है, और ये यूनेस्को की मुख्य प्राथमिकता है। इस सर्वे में दुनिया भर के लोगों को 11 चुनौतियों और उन पर पार पाने के समाधानों के बारे में अपनी चिंताएं साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सर्वे में शिरकत करने वालों की बहुसंख्या यानी लगभग 67% ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को अपनी शीर्ष चिंता के रूप में चुना। सर्वे में दिखाया गया है कि हिंसा और संघर्ष, भेदभाव व समानता और भोजन का अभाव, पानी व आवास अन्य बड़ी चुनौतियों में शामिल रहे। प्रतिभागियों का मानना है कि कुल मिलाकर शिक्षा प्रसार ही हर एक चुनौती का सटीक समाधान हो सकता है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।